محمد وآل بيت محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
شب جمعة شب رحمت و مغفرت ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، تمام امین کے لیے خصوصاً جن کے والدین گزر گئے ہیں انہیں یاد کرنے کی رات ہے، محسنین اساتذہ علماء دادار سب کے لیے، اور حسین علی غلام علی امجد حسین علی حسین علی ان کے لیے، تمام مرحومین مومن مومنات کے لیے سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج کیونکہ خصوصی شب ہے دعا کمیل کی، انشاءاللہ دعا کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، اسی کے اندر جو مفاہیم علمی ہے وہ بھی بیان ہوں گے، شرح بھی اہل بیت میں بتلائی ہے. میرے اللہ، मैं तुझसे सवाल करता हूँ, उस रहमत का कौन सी अल्लाह की रहमत, वस्यात कुल शय, जिस तेरी रहमत ने हर शय को अपने घेरे में ले रखा। ये खुद सवाल है, ए खुदा क्या मेरा दिल शय नहीं है कि तेरी रहमत मेरे दिल को भी घेरे मिले। अल्लाह की रहमत ने हर शय को जब अपने घेरे में मिल रखा है तो मेरे अल्लाह क्या मेरा दिल शय नहीं है। यही है रहमत मांगने का अंदाज। ऐ खुदा अगर मेरा दिल नजिस है तो उसे पाक कर दे, अगर गुनाहों की वजह से मेरा दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया है तो तू उसे नर्म कर दे, आज की रात तेरे रहमत के हुसूल की रात है, आज की रात तूने गुनहगारों के लिए खल्क की है। अगर तू दावत न देता तो मैं कभी ना आता, तूने खुद दावत दी है। अंबिया के जरिए से मौला अली के जरिए से अहल बैत के जरिए से क्या दावत, ऐ गुनाहगारो आ जाओ जिसे गुनाह मिटाने हैं, जिसने गुनाहों से जहन्नम की आग भड़काई है उस आग को मिटाने की रात है। सुभान, आज की रात तकदीर को बदलने की रात है, आज की रात हुर बनने की रात है। वे कुव्वत कल दी कहर तब कुल शय, वखज़ा लहा कुल शय, वदल लहा कुल शय। यानी ऐ खुदा इतना बड़ा सूरज अपने वजूद में, कितना भी बड़ा है मगर तेरा ताबे ओ फरमा बरदार। ये सारे कलामे काम देखिए, न इनकी हरकत में कमी होती है न ज्यादती, न अपने ऑर्बिट से इधर उधर जाते, ये ताबात है खुदा। ये सारे सैयारे ये सारे प्लानेट तेरे सामने खाज़े हैं तेरी दावत में मशगूल, मगर मैं हकीर और ज़ईफ बंदा कई बार तेरी दरबार में नाफरमानियां करता रहा। एक दिन का मेरे आंख में छुप जाए तो मैं तड़प के रह जाता हूँ। इंसान की ताकत है कुछ भी, इंसान बड़ा नहीं, एक दिन का आंख में छुप जाए इंसान तड़प उठता, फिर भी अल्लाह की मुखालिफत करता इंसान नादान। मौला अली फरमाते इंसान तू इतना ज़ईफ है अगर गर्म रेत पर नंगे पांव चले तेरे पांव चल जाते हैं, बल जा ले आ जाते तेरे पांव, अगर तू बर्फ में चले तेरे पांव फट जाते, मौला अली फरमाते न तू सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है न गर्मी को बर्दाश्त कर सकता, तू जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 40 गुना ज्यादा गर्म है। इंसान अपने ज़ईफ बदन पे रहम कर, अल्लाह की मुखालफत न कर, किसी अल्लाह के बंदे पे ज़ुल्म न कर। वज़ल्लल्लाहु कुल शय्यिन दिल से खुलू से पड़ी जाए मुर्दा भी जिंदा हो जाए। ऐ खुदा तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरी अजमत का वास्ता, वबे अजमत कल्लती मलनत कुल शय, वबे सुल्तान कल्लजी अला कुल शय, वबे वजह कल्बाबी बाद फनाए कुल शय। सुभान, तुझे वजहुल्ला का वास्ता, وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، تجھے تیرے پیارے اسماء کا واسطہ، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. سبحانك يا نور يا قدوس يا जब भी कोई शागिर्द खून करते हैं तो कहते हैं बेटा बात यह है कि ये अहले बैत का जो रास्ता है रियाजतों का रास्ता ये बहुत सख्त है, अगर आप में ताकत है तो आए इस मैदान में, वरना हमारा भी टाइम खराब हो गया आपका भी टाइम खराब हो गया। देखिए आयतुल्ला एक जमाने में जो हमारे जमाने में नहीं था, आयतुल्ला नुखूदगी होते थे, कल भी जिक्र किया था काबरम की इमाम रजा की तरह पूरी दुनिया से मरीज आते कहते आप चना खा लो आपका वालिद ठीक हो जाए, बाप बेटा हुआ है तेहरान में वो चना उसने खाया फोन किया बाबा ठीक हो जाए, ये साहिब करामत है। अब उनके शागिर्द के शागिर्द हैं वो आज भी तेहरान में, वो उनका नाम क्या है उनको कहते हैं आगाए नवादी, वो चना नहीं नवाज देते हैं, हफ्ते में एक मरतबा मिलते हैं, पूरी दुनिया से मरीज आते हैं, वो कहते हैं नवाज खा ले आपका बाप लंदन में पैरिस में ठीक हो जाए है नहीं? और वाकई ठीक होते बड़ा रश होता है, तो हमने उनसे खसूसी टाइम दिया हयात है। वैतला नुखुदगी के शागिर्द के शागिर्द तो हमने कहा किबला अकेले में वक्त दिया बड़ा रश होता हफ्ते में एक मरतबा मिलते हैं, तो लुत्फ किया उन्होंने टाइम दिया, हमने कहा किबला ये जो आप जिक्र करते हैं ना नवाज में हम सारी दुनिया जाती इतने सारे मरीज होते हैं हमें भी बता दें हम भी लोगों को नवाज दें ठीक हो जाएंगे सलाह कोई उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कहा काजी साहब मेरे पास कोई अलग कुरान नहीं है मेरे पास अलग मफाती नहीं है यही मफाती की दुआएं मैं पढ़ता हूँ ये कुरान की आयतें पढ़ता लेकिन जब मैंने शागिर्दगी इख्तियार की थी अनुभूति के शागिर्द की तो उन्होंने कहा बेटा कुरान में हर चीज है अहले बैत ने हर चीज दी है बात यह कि आपके अंदर कंट्रोल देते हैं और कंट्रोल में भी जो पहला मरल है आपके पेट पर कितना कंट्रोल है अगर आप पेट पे कंट्रोल कर सकते हैं तो इस वादी में कामयाब है अगर पेट के गुलाम है तो अपना भी टाइम जाया नहीं करें मेरा टाइम भी जाया नहीं करनी मैं पेट का गुलाम नहीं बोले कब बेटा ये जो रियाजतों का सिलसिला है दुआएं अहले बैत कैसी के मुर्दा जिंदा हो सकते हैं मगर शर्त है कि गिजा सिर्फ पाक और हलाल ना हो बल्कि हलाल भी हो और तैयब भी हो सलवात पढ़े मुहम्मद वाले कुरान में दो लफ्ज है एक हलाल और तैयब ये गजा के लिए है ये गजा हलाल है आप खा सकते हैं मगर जो रियाजतें करता है जो चाहता है कि मैं किसी मरीज को शिफा दे दे दुआ के जरिए से कुरान की आयत के लिए तो उसके लिए शर्त ज्यादा है उसके लिए तैयब गजा खाए क्योंकि तैयब गजा क्या है कल तैयब गजा वो है जो पकाने वाले ने जब पकाई हो ना तो वजू के साथ पकाई और सिर्फ वजू ही शर्त नहीं जब वजू के साथ जब रोटी पका रही है अगर मसल तैयब गजा कोई मोमिना रोटी पका रही है सालन पटा पका रही है तो एक तो वजू के साथ पकाए और हालत गफलत में ना पकाए यानी अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे किचन में और खाना पकाते रहे यानी कम से कम अगर सालन पकाते तो सौ सूरह इन्नल्लाह पढ़ती रहे और उसकी बरकत खाने में जाती रहे इस गजा को तैयब गजा कहते हैं सलवात पढ़े मोहम्मद अगर आपको साहिब करामत बनना है तो सारा इंतजाम जो है वो आपकी खवातीन के हाथ में है क्योंकि आप पका के खिलाती हैं अगर ये मैकडोनल्ड का खाना खिलाते हैं तो फिर तो कुछ नहीं होना है अपने पाक हाथों से वजू के साथ जिक्र खुदा करते हुए पकाएंगे तो वाकई उसके असरात बहुत ज्यादा होंगे और वाकई ये कहते हैं कि जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो उस्ताद ने कहा पहले देखो ईरान में तो रोटी बाहर से बनती है पहले देखो कि कौन सा रोटी बनाने वाला नान भाई वुजू के साथ पकाता है, नमाजी भी है, जिक्र खुदा में भी रहता है। मेरे पूरे मोहल्ले में कोई नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैंने बहुत दूर जाता था, कितने किलोमीटर दूर, एक मोमिन था जिसके अंदर ये शराय थे, उससे रोटी लेता था। सलावत पढ़े मोहम्मद कि ग़िज़ा एक हलाल है एक तैयब है। सैयद इब्ने ताऊस जैसा आलिम नहीं गुजरा है, अगर उलमा का सरताज है तो सैयद इब्ने ताऊस है। यानी कई मर्तबा सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उनको ज़ियारत नसीब हुई है। इमाम खुमैनी जैसे आलिम जब उनका नाम लेते हैं इतने अदब से लेते हैं कि मेरे माँ बाप उन पे फिदा हो, इतनी बड़ी हस्ती है सैयद इब्ने ताऊस। तो सैयद इब्ने ताऊस की ये अजमत है कि जब बालिग हुए थे ना तो उन्होंने जश्न मनाया था, जब बालिग हुए तो जश्न मनाया था कि अब मैं अल्लाह के काम का हूँ, अब पहले तो कोई चीज मुझ पर वाजिब ही नहीं थी, अब शुक्र है कि ये चीजें मुझ पर वाजिब हुई है, तो उन्होंने ईद मनाई थी कि अब मैं वाजिब की मंजिल पर पहुंचा हूँ। लिहाजा आज पूरे ईरान के स्कूलों में जश्न तकलीफ, तकलीफ यानी उर्दू वाली तकलीफ नहीं होती है, और फारसी वाली तकलीफ यानी वाजिब होना। सलावत पढ़े मोहम्मद उसकी सुन्नत मनाई जाती है। तो जिस जब पता चला कोई चीज वाजिब है तो वो जश्न मनाते हैं कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, पहले तो सर का हर चीज मुफ्त में मैं अल्लाह के काम का हूं। तो सैयद इब्ने ताऊस कभी खाना नहीं खाते थे कि अगर पकाने वाली ने पकाया है मगर हालत गफलत में पकाया है तो फरमाते थे अगर ये रोटी मैं खाऊंगा तो मैं भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ग़िज़ा कितनी अहम है, बहुत बड़े जितने भी हम नुकसान उठाते हैं ग़िज़ा से उठाते हैं, ग़िज़ा से। एक आयतुल्लाह कोहिस्तानी होते थे, ये भी वली खुदा थे, अभी इसी जमाने के आयतुल्लाह बायगानी के जमाने में थे, तो वो बहुत एहतियात करते थे, वली खुदा थे और उनकी भी हरम पाक में है। तो गंदम खरीदते थे एक साहब से और खुद फिर आटा घर में बनता था उससे रोटी खाते थे। इन्होंने महसूस किया कि ग़िज़ा में जो गंदम में कुछ गड़बड़ है, तो वो उस किसान को बुलाया कि भाई तुमने हमें बड़ा नुकसान दिया है, कुछ है तुम्हारे गंदम में गड़बड़, क्योंकि हमें वो मानवियत खत्म हो गई, रूहानियत खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा जी माजरत के साथ, वो जो साथ वाले की जमीन थी ना, मैंने जब काटा था तो एहतियात नहीं किया था, उसके भी कुछ काट दिए, तुमने हमें बदमाश कर दिया कि जब से हम गंदम खा रहे हैं तुम्हारा, हालांकि पैसे हमने दिए लेकिन तुम्हारी गलती है और उसका नुकसान हम दे रहे हैं कि हमारी मानवियत में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए हमने तुम्हें बोला। कागज साहब बिल्कुल सही करके जाओ उसको जाके रकम दो ताकि हमारी नमाज रोजा सही हो। सलावत पढ़ी मोहम्मद मसाइल है जो साथ वाले के भी रखते हैं, वो गंदम को उन्होंने गलती से उसके भी काट लिए। तो उधर मानवी तौर पे इस आयतुल्लाह को पता चला कि वो कुछ गड़बड़ पेट में जा रही है, हम तो पता ही नहीं क्या खाते जा रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही फर्क है, मसलन एक आलिम दीन गुजरे हैं मर्जा भी थे, तो हम साए उनके रहते थे, कहते रात को उठते थे दुआ अभी हमजा सुमयाली पढ़ते, पहले ही जुमले पे खड़े रहते थे, रोते रहते रोते रहते रोते, इलाही ला तो अद्दबनी बिहुकूमत, आगे बढ़ते ही नहीं थे, वही रोते थे फिर सजदे में, यानी खुदा मुझे अजाब के जरिए से बाअदब न कर रहा हूं, बस वही रोते रहे, वो ताकि नमाज हो जाती थी, ये आगे बढ़ते ही नहीं थे। ये क्या दिल पाक है, दिल नरम है, जितना दिल पाक होता है दिल नरम होता है, आंख में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। जब ग़िज़ा का हम ख्याल नहीं करते दिल हमारा क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है। कुरान कहता है कि ग़िज़ा की वजह से, गुनाह की वजह से दिल इंसान का पत्थर हो जाता है, इंसान के लिए रोना बहुत मुश्किल है। अब देखिए सबसे अजीम जो सरमाया आपको कयामत में काम आएगा ये आंसू है, आंसू से बढ़कर कोई चीज नहीं है। یا شہید کے خون کے قطرات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور اس کے بعد اگر سب سے محبوب ترین کی جو انسانوں کی طرف سے, وہ یہ آنسو ہیں جو بہتے ہیں. اور یہ آنسو کب آتے ہیں؟ جتنا دل نرم ہوگا اتنے آنسو گریں گے, جتنا دل پاک ہوگا اتنے آنسو آنکھ سے آتے ہیں. تو اتنی لذت معنوی ملتی ہے. جب گناہ سے دل سخت ہو جاتا ہے تو آنسو بہانا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
آئیے اللہ کی دو ناموں سے فیض لیں. یا نور
بچھا لے قبر کا بچھو,
और गुनस्ता है गुनाहगार 40 साल कब्र में दर्द। अरे खुदा मैं दुनिया के बिच्छुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कब्र के बिच्छुओं को कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये कब्र के बिच्छू अल्लाह की तरफ से नहीं है। मलाली फरमा के जब तुम किसी को गाली देते हो कब्र में बिच्छू बनाते हो, जब गीबत हो तोहमत लगाते हो ये कब्र का बिच्छू बनाते हो, ये तुम्हारे गुनाहों से बनते हैं। ऐ खुदा मुझे नहीं मालूम आज तक मैंने कितने हजारों बिच्छू सांप बनाए, आज तौबा की रात है आज मगफिरत की रात है आज हुर बनने की रात है। मेरे अल्लाह जिस तरह हुर को तूने बख्श दिया आज हमें भी बख्श दे, उसने कैसे तौबा की वैसे आज हम भी तौबा करें। हाथों को बांध कर आए हुसैन के कदमों पे सर रखा, फरमाया रहमत लिल्लामीन के बेटे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार आपके कदमों में है। अजीज हम कितने भी गुनाहगार मगर हुर जितने गुनाहगार ने और कितना बड़ा गुनाहगार।
और अगर मौला के रास्ते को न रोकता अली अकबर के सीने पे बलूची न लगती।
सबसे बड़ा मुजरिम हुर है
और सकीना की यतीमी का सबब है। अगर हुर मौला के रास्ते को न रोकता तो अली असगर की नन्ही सी गर्दन पे तीर न लगता। मगर खुदा ने और मौला हुसैन ने हुर को भी बख्श दिया, यकीनन खुदा आपको और हमें भी बख्श दे।
बस सच्ची तौबा कर, उन्हें तौबा कैसे मांग, आइए हुर का तरीका हम भी इस्तेमाल करें। मौला हुसैन के कदमों पर सर रख, क्या फरमा,
ऐ रहमतल आलमीन के बेटे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार आपके कदमों पे है, अपनी अम्मा जहरा की चादर के सर के मौला मेरी खताए बख्श दे। आइए हम भी यही खुदा से फरियाद करें, ऐ खुदा तुझे शिकस्ता पहलू सब तीन मर्तबा फरियाद करें, या जहरा
की नाम
अल्लाह ने शिफा की है सब बलंदा, या जहरा ही वतन में गरीब वतन जहरा,
अपने ही वतन में
गरीब वतन क्यों अजीजों? अगर कोई परदेश में भी मर जाए उसका जनाजा उठाने के लिए चार लोग मिल जाते, मगर जहरा का जनाजा किस गुर्बत से उठाया गया? नबी की बेटी का जनाजा रात को उठाया गया। आगे आगे साबी फकर सलमान जैसे बीवी के जनाजे में है, गुर्बत से जनाजा उठाया गया। मौला अली ने जहरा का जनाजा कब्र में रखा, यहाँ अली की गुर्बत शुरू हो जाती है। जहरा का जनाजा तैयार है, कब्रे जहरा भी तैयार है। सलमान दूर जाके पीठ दे कर रो रहा है, अभी तक जहरा की मजलूमियत पे रोया था सलमान, मगर रब अली की मजलूमियत शुरू हो गई। रब अली की मजलूमियत पे रो रहा, क्यों रो रहा? अली की क्या मजलूम? बीबी पाक का जहरा के जनाजा तैयार है, मौला अली कब्र में क्यों नहीं लिटा रहे? कब्र भी तैयार, अज़ादारो सुनेंगे बहुत रोएंगे। फिकर का मसला है, शरीयत का मसला है। अगर जनाजा किसी खातून का हो तो जनाजा देने वाला भी महरम हो, लेने वाला भी महरम हो। आए सलमान महरम
Let's go.
अगर बाग टूटा हुआ है बस लियां टूटी हुई है अहमद ने फरमाया होगा आराम से मुझे मेरी जहरा दे दो يا غفار يا غفار
يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا
تنزل البلاء
جو بھی بلائیں آتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. ہم کوئی اولیاء خدا نہیں ہیں, ہم کوئی حضرت ایوب نہیں ہیں کہ خدا ہم سے امتحان ہے. اولیاء خدا پہ بیماری امتحان ہے, گناہگار کے لیے بیماری عذاب ہے, بلا ہے, گناہ کا نتیجہ. اس میں بھی رحمت ہے کہ یہیں پہ سزا مومن کو مل جائے آخرت میں قبر میں عذاب سے بچا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تابس الدعاء. مولا علی فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہو. اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون ہے. اے خدا تو پرندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے, تو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. آئی خدا اگر میری دعا قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدبختر بھلا کون ہے. بخش دے میرے ان گناہوں کو جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی. معصوم امام سے پوچھا گیا کون سے گناہ جس سے دعا بھی قبول. فرمایا آنکھ کے گناہ, نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا, چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے, یہ وہ گناہ اس کی نجاست انسان کے پورے وجود میں پھیل جاتی ہے, پھر اس بدبخت انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں غیرت مند وہ ہے جو کسی کے ناموس کی طرف حرام سے نہیں دیکھتا. حضرت حمزہ سے پوچھا گیا آپ اسلام سے پہلے آپ نے کبھی کسی نامحرم عورت, کسی کی بہن ماں بیٹی کو حرام سے کیوں نہیں دیکھا, اسلام تو بعد میں. حضرت حمزہ نے فرمایا میں اسلام سے پہلے مسلمان تھا, خدا کو عادل سمجھتا تھا, اگر میں کسی کی بہن ماں کو حرام سے دیکھوں گا تو میری ماں بہن بھی بچ نہیں سکتی. اسی لیے مولا فرماتے ہیں غیرت مند وہ ہے جو کبھی کسی کی بہن ماں بیٹی کو حرام سے نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں غیرت لوگ ایک طرف ایک طرف سمجھتے ون وے, میری بہن ماں کو کوئی نہ دیکھے میں سب کو دیکھ, یہ غیرت نہیں ہے. غیرت دو طرف ہے. مولا فرماتا ہے غیرت مند وہ ہے کہ خود کسی کی بہن ماں کو بھی نہ دیکھے تو اس کی بہن ماں بھی محفوظ رہے. سچا واقعہ ہے, ایک بیپاری تھا, 6-6 مہینے سفر پہ جاتا تھا, اس کی بیوی پاک دامن تھی, وہ احسان جتلاتی تھی تو 6-6 مہینے دور رہتا ہے, مگر میں اتنی متقی ہوں میں کسی مرد کو کبھی بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی, تیرا انتظار کرتی. وہ کہتا ٹھیک ہے تو متقی ہے مگر اس میں صرف تیرا حصہ نہیں میرا حصہ بھی, میں بھی جب 6 مہینے باہر رہتا ہوں کسی بھی لڑکی کو کسی عورت کو حرام سے نہیں دیکھتا, جب میں نہیں دیکھتا میری بیوی محفوظ ہے. وہ بیوی تھوڑا دماغ اس کا ٹیڑھا تھا, اس کا یہ نہیں تیرا کمال نہیں میرا کمال, اجازت ہے اگر میں گناہ کرنا چاہوں تو کیسے تو روک سکتا, تیری تک وہ ملے کیسے, تو امتحان کر لے. یہ چلی گئی اس بازار میں جہاں گندی بازار تھی, دوائی فوری بازار تھی, खड़ी थी, कोई मर्द उसकी तरफ देख, कोई इसकी तरफ नहीं देख, हैरान थी। आखिर एक नौजवान ने किसी हाथ लगाया, मुझे सबसे करंट लगा भाग के, ये थक के वापस आ गया। मैंने कहा क्या तजुर्बा किया, कि कोई मर्द ने मेरी तरफ नहीं देखा। एक जवान आया था, उसने हाथ लगाया, मुझे पता नहीं उसे क्या करण लगी, वो भी भाग गई थी। इसने अल्लाह अकबर की तकबीर बनी थी। तो मैंने भी जवानी में ये गुनाह किया, हाथ इसी लगे, जब मैं जवानी में मैंने भी किसी नामहरम की तरफ हाथ लगाया था, वरना ये हाथ भी न बढ़ता। तो ये गुनाह है जिससे मुसीबतें आती हैं। गुनाह ये साथ बताते हैं लोगों, गुनाह है, आँख से देखोगे इधर उधर सब परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा, मगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं। आंखों की दहाल, जबान के बाद आंखों की दहाल बहुत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिज़्ज़ुनूब अल्लती तग़तऊ रज़ा, ए खुदा मेरे उन जिसकी वजह से बंदा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाता। अल्लाहुम्मा फिर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तुअज्जिलुल फना। ये दूसरी दुआ का जुमला है। वाला फरमाते गुनाह खुदकुशी है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाती है। वो इंसान ये लज्जत को हलाल तरीके से हासिल कर सकता है, खुदकुशी, वरना 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाएगी। आज एड्स की बीमारी देख लेंगे, सर्विकल कैंसर देख लेंगे, वक्त से पहले लोग जवानी में मर जाते हैं। ये जिना एक गुनाह कि 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाती है। अल्लाह गुनाह की असर।
अल्लाहुम्मा अग़फिर लिज़्ज़ुनूब अल्लती तुअज्जिलुल फना। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली कुल्ल ज़म्बिन अज़नबतु। ऐ मेरे अल्लाह आज मेरे सारे गुनाह बख्श दे, बख्श दे। वह कुल खतियत अगदा दुहा, मेरी सारी खताएं बख्श दे। मौलानी फरमाते हैं जब भी दुआ मांगो या नमाज पढ़ो या मजलिस में जाओ, उस दुआ मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ो।
ये हक है, ये अदब कि जब भी मजलिस में आओ ये तसव्वुर करो ये मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस, दुआ को मैं पढ़ू समझो ये मेरे जिंदगी की आखिरी दुआ।
ओ मेरे अल्लाह में से किसी को नहीं मालूम आइंदा शबे जुमा जिंदा रहेंगे या कब्रों में चले जाएंगे। ओ मेरे अल्लाह हमारे सारे गुनाह बख्श दे, आज हमारी सारी खताएं बख्श दे सब मिलके। या सरिया रिदा, या सरिया रिदा, बुलंदा
या सरिया रिदा,
या सरिया। عباس محافظ حجاب کا مگر عباس کے پاس بی بی کہاں آتی تھی یتیم بچوں کو لے آتی تھی علی اکبر کی ماں وہی بیٹھ کر دی میرے عباس کو معاف کر دو بی بی میرا عباس اگر رہتا عباس کے بازو رہ دے آپ کا علی اکبر بن جات ایک ہی بی بی کے گھر جات مگر ایک ایسا گھر تھا جب عباس کی ماں اس دروازے پہ پہنچ دیتی اس قدر شرمندہ ہوتی تھی اس قدر روتی تھی اس قدر شرمندہ ہو کے روتی تھی حتیٰ کہ دروازہ خود نہیں کھٹکھٹاتی تھی عباس کے بچوں کو کہتی تھی تم دروازہ کھٹکھٹاؤ اس بی بی سے مجھے بڑی شرم آتی ہے اور جب دروازہ کھلتا تھا علی اصغر کی سب سے زیادہ آپ سے شرمندہ ہوں نہ آپ کا علی اصغر رہا نہ آپ کی سکینہ رہی میرے عباس کو معاف کر دیں آنکھوں میں آنسو ہے سب بلند آواز سے فریاد کریں خدا ہم سب کے گناہ بخش دے یا غفار سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے موت نہ دے لا جب تک جو نماز روزہ حج زکات خمس قضا ہے وعدہ میں کر دے میرے اللہ جو ہمارے اندر خامیاں خرابیاں ہیں وہ جلد دور کر دے ساری نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو عذاب سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہمیں علم کامل عقل کامل تقوی کامل ایمان کامل عطا فرما کوئی گناہ ایسا نہ کریں کوئی ظلم ایسا نہ کریں کوئی بے حیائی ایسی نہ کریں جس سے امام زمانہ کا دل زخمی ہو جائے امام زمانہ کو ہم سے راضی و شاد فرماؤ میرے اللہ جو سازشیں ہو رہی ہیں مذہب اہل بیت کے خلاف وہابیت کی سازشیں اخباریت کی سازشیں مسلمیت کی سازشیں کسی ہم مذہب کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں کسی کو وہابی بنا دو کسی کو نصیری بنا دو کسی کو اخباری یہ سازش کرنے والے قابل ہدایت نہیں تو نیز تو نابود فرماؤ ملت اسلامیہ ملت جعفریہ کو متحد فرماؤ میرے اللہ یہ جو سعودی ہے جن پورے شام کو تباہ کر رہے ہیں عراق کو تباہ کر رہے ہیں یہ سعودی ہے جن جو پاکستان میں شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں افغانستان انہیں نیز تو نابود فرماؤ یمن کے مظلوموں کو فتح عطا فرماؤ پوری دنیا سے سعودیت کا خاتمہ فرماؤ صدام کی طرح ذلیل و خوار فرماؤ میرے اللہ جو بے گناہ قید میں رہائی عطا فرماؤ مریضوں کو شفا عطا فرماؤ بے اولاد کو اولاد عطا فرماؤ جنہیں اولاد ان کی اولاد کو صالح فرماؤ
میرے مالک پوری دنیا سے ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے خادم و غلاموں میں شامل فرما. میرے اللہ جو مانگا گئے عطا فرما، جو بھول گئے محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. میرے اللہ دنیا میں اگر ایک دعا قبول کرتا ہے تو ہم قبر میں، برزخ میں، قیامت میں زیادہ محتاج، وہاں بے شمار دعائیں قبول فرما. دنیا میں زیارت حسین اور قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، ان کے والدین، میرے والدین ذرا سے گزر گئے، یہ مومنین جن کا ذکر تھا پہلے بھی سنا، ان کے لیے، سارے علماء کے لیے، حسین علی و غلام علی احمد حسین علی، حسین علی و تمام مرحومین مومنین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد ربنا وتقبل منا انك انت السميع اللهم صل على محمد وعلى ال حسين
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين